Sahavīryam karavāvahai Tejasvināvadītamastu mā vidviṣāvahai Om Shanti 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 Gurur Brahmā Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gururev Param Brahmā Tasmai Sri Gurave Namaha Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadguru Brahma Vidvaram Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru Krishnam Vande Jagat Guru.
So today we'll be starting. आज हम लोग को छठा अध्याय शुरू करना है. तो अभी तक क्या एक से पांच तक भगवान ने कहा है, तो उसको हम लोग एक शॉर्ट थॉट फ्लो देखते हैं. पहला अध्याय क्या था? अर्जुन विषाद योग. तो अर्जुन का विषाद भी योग बन सकता है अगर विषाद भगवान के सामने रखा जाए. अर्जुन जो है बहुत ही भाग्यशाली था कि भगवान उसके साथ में थे. तो अर्जुन को जब दुख हुआ तो उसने भगवान से कहा. तो हम लोग को अगर दुख हो कहाँ जाना चाहिए? फिर क्या होगा? वो योग हो जाएगा. विषाद भी योग बन जाता है. उसके बाद भगवान ने उसको उसका दुख देखकर समझ गए कि भाई इसका दुख जो है निवारण कैसे होगा, सांसारिक दुख का निवारण कैसे होगा, क्या दवाई है उसकी? आत्मज्ञान. उसको छोड़कर दूसरा कोई दवाई नहीं है. तो भगवान ने सीधा उसको आत्मज्ञान दे दिया. अच्छा, आत्मज्ञान देने के बाद में भगवान कहता है उठो, खड़े हो, लड़ो, युद्ध करो. वो उठता नहीं है, उठता नहीं है. उसके बाद में दूसरे अध्याय में सांख्य योग, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देने के बाद में भगवान ने देखा है तो उठता नहीं है. कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा और कुछ प्रॉब्लम है. तो दूसरा प्रॉब्लम उसका है कि उसकी वो वासना है, वो क्षत्रिय है, और उसकी वासना खत्म नहीं हुई है. वासना खत्म नहीं हुई है इसलिए उसका मन शुद्ध नहीं है. क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं है इसलिए ज्ञान बैठा नहीं, इसलिए उसको मन शुद्ध करना होगा. तो भगवान ने कर्मयोग बताना शुरू किया उसको. कर्मयोग के बारे में थोड़ा सा बता के फिर बोलते हैं कि फिर जो है ज्ञान जब बैठ जाता है ना तो उस आदमी का प्रज्ञा जो है स्थित हो जाती है. प्रज्ञा स्थित हो जाए, जैसे ही प्रज्ञा वर्ड उसको समय स्थित हो जाती है तो उसने अपना एक वर्ड निकाल दिया कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है ये बताओ मेरे को. स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, स्थित हो गई. तो भगवान उसके फिर उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं कि उसकी मन की अवस्था कैसी होती है. स्थित प्रज्ञ का जो हम लोग का प्रकरण यहां पर है वो एक स्टैंडर्ड माइंड, ये ज्ञानी का मन कैसा होता है उसके बारे में सब कुछ है वहां पर. तो हमको उस मन से अपने मन को कंपेयर करना है तब पता लगेगा कि हमारा मन कैसा है. तो स्टैंडर्ड माइंड क्या होता है वो भगवान ने स्थित प्रज्ञ का बताया. बताने के बाद में फिर तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि आपको कर्म योग करना है. तो कर्म योग करना है बहुत अच्छी बात है. तो कर्म योग का सिद्धांत क्या है? तो 30वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर. मई सर्वाणि कर्माणि, तुम्हारे जितने भी कर्म हैं सारे 100% वो सब आप हमारे लिए करो। अध्यात्म चेतसा, चेतसा मतलब तुम्हारा माइंड कैसा होना चाहिए, अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा शंकराचार्य जी ने ऐसा वहां पर व्याख्या की है कि आप अपने आप को भगवान का नौकर मानो, अपने को भृत्य समझो। अगर आप नौकर अपने आप को मानेंगे तो नौकर का काम क्या है, हर समय उसका एक ही काम होता है कि मालिक को हम कैसे खुश करें अपने काम से। तो भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त जो है हमारा नौकर हो और हम किससे प्रसन्न होंगे वो काम करें। निराशी, निराशी मतलब आशा नहीं करे, फ्यूचर के अंदर में कर्म का फल क्या आएगा उसकी चिंता नहीं करे। निर्ममा, ममता किससे का किसके साथ होती है, जो फल ऑलरेडी पा चुके हैं भूतकाल में, आशा भविष्य काल की होती है। भूतकाल में जो हमने प्राप्त कर लिया उसके साथ में हमारी ममता जुड़ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि काम के समय आप जो है फल की भी चिंता नहीं करो और आपके पास में जो है उसकी ममता भी नहीं करो, और प्रेजेंट के अंदर कैसे करना है, वर्तमान काल में कैसे करना है, विगत ज्वारा विदाउट एक्साइटमेंट, विदाउट एक्साइटमेंट आप अपना काम करो, ऐसा भगवान ने कहा। ये कर्मयोग की परिभाषा है। अच्छा, इसको हम लोग सिंपल दो वर्ड में कहते हैं कि ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। जो भी कर्म हम करेंगे ईश्वर के अर्पण करेंगे। ईश्वर को अर्पण करने का ये मतलब नहीं है कि हम झूठ बोलेंगे वो ईश्वर को अर्पण करेंगे और ईश्वर ले लेगा, ईश्वर नहीं लेगा। ईश्वर जो है अच्छी अच्छी चीजें लेता है तो वो हमारे कर्म नहीं लेगा वैसे। तो कर्मयोग का फल क्या होता है, आप बार बार कितनी बार कह रहे हो, अब बहुत देर तक कर्मयोग की चर्चा करते रहेंगे, छठे अध्याय को शुरू में भी वो कर्मयोग को पकड़ेंगे, फिर दूसरे अध्याय में कर्मयोग था, तीसरे में कर्मयोग है, चौथे में भी है, पांचवे में भी है, छठे में दो श्लोक कर्मयोग के ऊपर में। अब आप ये सोचिए कर्मयोग कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। फल क्या मिलेगा, तो यहां पर गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति है लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इव अंबसा। अगर आप भगवान के लिए कर्म करते हैं और उसके साथ में अटैच नहीं होते हैं संगम त्यक्त्वा, तो क्या होगा, लिप्यते न स पापेन, बोले पाप के साथ आप लिप्त नहीं होंगे। पाप क्या है, वासना पाप है, वासना नहीं बनेगी। पद्म पत्र एवं अंबसा, बोले आप एकदम जैसे पद्म पत्र लोटस लीफ के ऊपर में जब पानी रहता है वो पानी लोटस लीफ को भिगा नहीं सकता, उसी तरह से आपके कर्म भी जो हैं आपको किसी तरह से भी परेशान नहीं करेंगे, बांधेंगे नहीं आपको। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान से कर्म का संन्यास, ज्ञान से कर्म का संन्यास, कर्म करना मतलब छोड़ना नहीं है मगर ज्ञान से उसको संन्यास करना है। वो कैसे है भाई, सर्वव्यापी आत्मा का ज्ञान आपको होना चाहिए। सर्वव्यापी आत्मा मतलब आत्मा सब जगह है, ऐसा ज्ञान आपको होना चाहिए। और वहां पर एक बताया कि कर्म के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, कारक हैं, वो सारे के सारे ब्रह्मणी हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतम ब्रह्म ईवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम। जब हम हवन करते हैं तो जिस चम्मच से स्पून से हम उसको डालते हैं हवी, वो क्या है, वो भी ब्रह्मन है। जो मंत्र बोलते हैं वो भी ब्रह्मन है। जिस देवता की पूजा करते हैं वो भी ब्रह्मन है। वो देवता जो फल देगा वो भी ब्रह्मन है। जिस देश में हम हवन कर रहे हैं वो भी ब्रह्मन है। जिस काल में हम कर रहे हैं वो भी ब्रह्मन है। ब्रह्मार्पण, ये ब्रह्मार्पण के इतनी चीजें हैं। ब्रह्म अभी जो हम अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्मन है, ब्रह्माग्नो जो अग्नि है वो भी ब्रह्मन है, और ब्रह्मनाहुतम जो कर रहा है वो क्या है, वो भी ब्रह्मन है। ब्रह्म ही बतेन गंतव्यम, वो आदमी कहाँ जाएगा, ब्रह्मन में जाएगा। उस व्यक्ति का नाम क्या है, ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे करने वाले को भगवान कहते हैं वो ब्रह्म कर्म समाधिना है। अच्छा, फिर उसके बाद ने एक चीज और बताई वहां पर चौथे अध्याय के अंदर में, सर्व कर्म में अकर्ता आत्मा को देखता है, कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मिणी च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को देखना मतलब हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो अकर्ता है, वो कुछ कर्म नहीं करता है, हम कर्म कर रहे हैं मगर एक तत्व है वो कुछ करता नहीं है। तो कर्म के टाइम में हमारा जो है मन वहां रहना चाहिए, अकर्ता आत्मा में रहना चाहिए। अकर्म नीच कर्म है, मगर कोई आदमी बोले मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, देखो मैं कर नहीं रहा हूं, जो मैं कर नहीं रहा हूं कर नहीं रहा हूं, तो इसमें तो ईगो आ गया, अहंकार आ गया। तो अकर्म में कर्म को देखना, कर्तापन को देखना, सब बुद्धिमान मनुष्य सु सयुक्त कृष्ण कृत, जो इस तरह से देखता है वो बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान की परिभाषा है, कौन है बुद्धिमान, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म के अंदर कर्म को देखता है वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। सयुक्त वो भगवान से जुड़ा हुआ है, कृष्ण कर्म कृत वो सही तरीके से कर्म कर रहा है, वही ठीक से काम कर रहा है। तो आत्मज्ञान से सारे कर्म को बाधित करना है, काम बंद नहीं करना है, चौथे अध्याय के हिसाब से काम बंद नहीं करना है, मगर ज्ञान से सारे कर्म को बाधित करना है और अकर्ता आत्मा को देखना है। इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं। फिर पांचवें अध्याय में सारे कर्मों का त्याग करना है, सर्व कर्म संन्यास। सर्व कर्म संन्यास का मतलब क्या बताया गया था, कि आपको लौकिक और वैदिक कर्म सब बंद कर देने हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन करना है, याद है आपको। तो पांचवें अध्याय बोलते हैं कि भाई आपका जो है मन आस्ते आस्ते थोड़ा शुद्ध हो गया है, अब लौकिक और वैदिक कर्म सब बंद कर दो, अब फायर रिचुअल वगैरह कुछ नहीं करना है, अब आप जो है मन आपका थोड़ा सा शुद्ध हो गया है, आप श्रवण मनन और निधि ध्यासन के अंदर सब आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ विभीतिशा संन्यास। आपको अगर याद हो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। या जिज्ञासा संन्यास, जिज्ञासा संन्यास मतलब अब हमको ब्रह्म या आत्मा की जानने की इच्छा हो गई, इसको जानने के लिए हमने लौकिक और वैदिक कर्म सारे बंद कर दिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी गुरु के पास जाएंगे, श्रवण मनन और निधि ध्यासन का चेष्टा करेंगे। अच्छा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् कार्यं। तो साधक क्या करता है फिर, तो कहता है तद बुद्ध है तद आत्मन तन्निष्ठा तत्परायणा। तत्परायणा मतलब उसने ठीक कर लिया कि मेरा गोल क्या है, गोल क्या है, मेरे को आत्मज्ञान चाहिए। उसके बाद में तन निष्ठा का मतलब क्या हुआ, अब वो श्रवण और मनन के अंदर उसकी निष्ठा है। तद आत्मना का मतलब हुआ कि वो अब निधि ध्यासन करेगा। उसके बाद में तद बुद्ध है, इसका मतलब ये हुआ कि अपरोक्ष अनुभूति, पहले गोल ठीक करो, श्रवण मनन करो, निधि ध्यासन करो, अपरोक्ष अनुभूति, ये है आपका पाथ पूरा बता दिया। अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, अपरोक्ष अनुभूति होने के बाद में गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, पुनर्जन्म नहीं है आपको, अगर जन्म लेना हो तो मत करना ऐसा फिर से अगर जन्म चाहिए तो ये सब काम मत करना। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से उसने अपने को एकदम साफ कर लिया, कोई उसके अंदर अब पाप नहीं है, कोई धूल नहीं है, कोई उसके गंदगी उसमें नहीं है, उसका मन साफ हो गया है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं छठे अध्याय में। छठे अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। कब आता है ये? कर्म संन्यास के बाद में आता है। कर्म संन्यास, सर्व कर्म संन्यास के बाद में आता है। सर्व कर्म संन्यास के बाद में आपको क्या करना होता है? पांचवें अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा था? श्रवण मनन निधिध्यासन आपको करना है। अच्छा, केवल कर्म संन्यास से मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल कर्म संन्यास मतलब लौकिक वैदिक कर्म को हमने छोड़ दिया, संन्यास का मतलब त्याग, छोड़ दिया। उसको छोड़ देने से क्या मुक्ति मिल जाएगी? अभी मैंने आपको बताया सर्व कर्म संन्यास के बाद में क्या क्या करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन अपरोक्ष अनुभूति। अब कोई आदमी कहे मैंने जो है लौकिक और वैदिक कर्म छोड़ दिया, अब मैं मुक्त हो गया, नहीं, उसको मुक्ति नहीं कहते हैं। सर्व कर्म संन्यास के बाद में ध्यान करना होगा उसको, फिर उसको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, सर्व कर्म संन्यास किया, ध्यान भी में भी बैठा, मगर अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई, तो क्या मुक्त हो गया? नहीं हुआ। देखो, एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ना, तब आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक कैसे उसका थॉट चल रहा है आपको बताया हमने। अच्छा, छठे अध्याय का बीज जो है आपको पांचवें अध्याय के 27, 28, 29 से मिलेगा। छठे अध्याय का बीज, उसका सीड, पांचवें अध्याय के श्लोक नंबर 27, 28 और 29 में है। 27 में क्या है? वहां पर बताया गया, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्याम चच्छु सैव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो उपशमो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। क्या क्या करना है? छठवें अध्याय का पूरा बीज यहां पर है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोच्च परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। तो विषय बाहर रखें, आप ध्यान में बैठना होगा तो आपको विषय संसार को बाहर रखना है। उसके बाद में आपको उन विषयों से प्रत्याहार करना है, हटना है वहां से। विषय तो बराबर बाहर ही रहते हैं, मन जो है वहां लगा रहता है, तो मन को वहां से प्रत्याहार करना है, वहां से हटाना है। उसके बाद क्या करना है? आपकी आंख कैसी होनी चाहिए? अर्धनिर्मिलित, कि वो जो आपका जो कॉर्निया है वो ढक जाना चाहिए। अगर पूरी बंद होगी तो क्या होगा? किस अवस्था में आंख पूरी बंद होती है? वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर खुली रहे पूरी तो क्या होगा? फिर विषय घुस जाएंगे अंदर, फिर विषय घुस जाएंगे। तो आप अब इसके बाद जाके आप किसी भी गुरु की फोटो देखो, ध्यान में बैठा हो, भगवान शिव बैठे हो, तो उनकी आंख देखना, आंख जो थोड़ी खुली रहेगी। अच्छा, उसके बाद प्राण और अपान को उन्होंने कहा समोह कृत्वा, मन बुद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। एक सब का लक्ष्य क्या है? मुक्ति पर आए ना, मुक्ति चाहिए मेरे को, लक्ष्य जो है मुक्ति होना चाहिए। और विगत इच्छा भय, कोई डिजायर अब नहीं है, कोई भय भी नहीं है, इच्छा और भय से हम दूर चले गए। इस ध्यान साधना का फल क्या है? तो उसका 29वें श्लोक के अंदर उन्होंने बता दिया कि भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति, आपको शांति मिलेगी। ज्ञात्वा, मेरे को जानने से क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। तो ध्यान का फल, मुक्ति का फल क्या है? शांति मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने बता दिया। अच्छा, छठे अध्याय को भी भगवान ने जो है ध्यान से नहीं शुरू किया। देखो, पहला दूसरा जो उसका श्लोक है वो कर्मयोग के बारे में है, और कर्मयोग आपको हमने बताया दूसरे अध्याय में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवे में भी है, छठे में भी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझो, कर्मयोग कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले दो श्लोक के अंदर कर्मयोग की प्रशंसा है। अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए या तत्व ज्ञान चाहिए, या अगर आपको ब्रह्मन को जानना है, आपको दो किस्म की साधना करनी है, दो किस्म की साधना करनी है। एक तो है बहिरंग साधना, वो है कर्मयोग, और दूसरा है अंतरंग साधना जिसको ध्यान कहते हैं। अगर तत्व ज्ञान आपको चाहिए तो क्या करना होगा? दो चीजें करनी होगी, एक तो कर्मयोग करना होगा और दूसरा आपको ध्यान योग करना होगा। कर्मयोग बहिरंग साधना कहलाता है और ध्यान योग अंतरंग साधना कहलाता है, और ये सीक्वेंस में करना होगा। आप कहोगे कि उल्टा कर दो, पहले ध्यान करेंगे, अंतरंग साधना पहले करेंगे, बहिरंग बाद में करेंगे, नहीं होगा, चॉइस नहीं है। अच्छा, कर्मयोग और उसके बाद ध्यान, इसको हम लोग सिंपल वर्ड में कैसे कहते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, नॉलेज, ऐसा बताया ना आपको, कई बार हम कहते हैं ऐसा। पहले क्या करना है? प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। कैसे होगा? कर्मयोग क्या है? साइंस है, पकड़ के जाओ, नहीं चलोगे इस रास्ते पर तो नहीं होगा। कर्मयोग क्या है? भगवान की खुशी के लिए कर्म करना। आप साइंस तो समझते हो, क्या करते हो आप? अपनी खुशी के लिए करते हो। मन शुद्ध होगा? नहीं होगा। ध्यान में बैठोगे तो ध्यान होगा? नहीं। अगर ध्यान में सफलता अगर चाहिए तो ये करना होगा, बहिरंग साधना पहले करनी होगी, फिर अंतरंग साधना। बिना कर्मयोग से चित्त शुद्धि बिना किए ध्यान कभी नहीं होगा, आप लिख के रख लो। कभी भूल नहीं करना कि हमको ध्यान का शिविर हो रहा है, जा रहे हैं। आप हिमालय पर जाओगे, वहां पर बोलते हैं कि पावर मेडिटेशन, 3 दिन के अंदर आपको पावर मेडिटेशन करवा देंगे। कितने पैसे लेंगे? वो लिखा रहता, बहुत कुछ लेता, 5,000, 10,000, 20,000 लिखा रहता है पावर मेडिटेशन। लोग फंस जाते हैं, 3 दिन में काम हो जाएगा। अच्छा, भगवान कहते हैं कि भाई जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में कर्म को मत छोड़ दो, लौकिक कर्म, वैदिक कर्म को मत छोड़ दो। पहले आप देखो आप ध्यान के योग्य बने कि नहीं बने, तब उसको सर्वकर्म संन्यास करना। सर्वकर्म संन्यास 5th chapter में है, उसके पहले 3 chapter और भगवान ने कर्मयोग के बारे में कहे। आपको उस सीक्वेंस से आस्ते 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 ऊपर उठना है, आस्ते आस्ते आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, अब भगवान जो है पहले और दूसरे श्लोक के अंदर फिर कर्मयोग की महिमा बताते हैं और बोलते हैं कर्मयोगी जो है ना वो योगी और सन्यासी के बराबर है। देखो, 3 वर्ड आएंगे यहां पर आपको समझने के लिए। एक होगा कर्मयोगी, दूसरा होगा योगी, और तीसरा होगा सन्यासी। अब भगवान कहने जाएंगे, कहेंगे आपको कि जो कर्मयोगी है, कर्मयोग इतनी अच्छी चीज है कि वो जो है योगी और सन्यासी के बराबर है। मतलब आप किसी तरीके से अपने आप को उससे कम मत समझना, उससे कम मत समझना। तो शुरू करते हैं पहला श्लोक।
ओम श्री परमात्मने नमः।
ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ षष्ठोऽध्यायः।
अथ षष्ठोऽध्यायः।
श्री भगवानुवाच।
श्री भगवानुवाच।
अनाश्रितः कर्मफलम्।
अनाश्रितः कर्मफलम्।
कार्यं कर्म करोति यः।
कार्यं कर्म करोति यः।
ससन्यासी च योगी च।
ससन्यासी च योगी च।
न निरग्निर्न चाक्रियः।
न निरग्निर्न चाक्रियः।
श्रीभगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलम्। कार्यं कर्म करोति यः। ससन्यासी च योगी च।
अनाश्रित कर्मफलम। कर्मफल फ्रूट ऑफ एक्शन। अनाश्रित, अनाश्रित का भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं कर्मफल तृष्णा रहित इत्यर्थ, जिसमें कर्मफल की तृष्णा नहीं है। तृष्णा नहीं मतलब ऐसा ही फल चाहिए मेरे को, इतना ही चाहिए मेरे को, परीक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना ही है, ऐसा फल जिसका जो है ऐसी इच्छा नहीं है। अनाश्रित प्रसाद बुद्धि, भगवान ने जो दिया ठीक एक्सेप्ट कर लेंगे। अनाश्रित कर्म फलम। अब यहां पर प्रश्न उठता है भाई कौन सा कर्म, कौन सा कर्म फल। तो देखो ये अनाश्रित कर्म फल जो है ये निर्देश देता है कि इसके अंदर काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म नहीं है। काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म नहीं है। तो कौन से कर्म है? कार्य कर्म करोती है, अपने कर्तव्य कर्म करता है। कर्तव्य कर्म कौन कौन से हुए? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, ये आपके कर्तव्य कर्म हुए। और इसके साथ में दो और जोड़ दो, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म तो शास्त्र कभी नहीं कहता करो, और काम्य कर्म भी शास्त्र ही कहता है, क्योंकि काम्य कर्म बांधता है आपको, इसलिए हमको करना क्या है? काम्य कर्म
नहीं।
जो कर्म आप अपनी खुशी के लिए करते हो उसको काम्य कर्म कहते हैं। ये कर्म बांध रहा है आपको, इसलिए काम कर्म भी नहीं करना है, निषिद्ध कर्म भी नहीं करना है। हमको कौन से कर्म करने हैं? नित्य कर्म करने हैं, नैमित्तिक कर्म करने हैं, प्रायश्चित करना है, उपासना करना है, ये चार चीज करने हैं। तो कार्यम कर्म करोति है, जो अपने कर्तव्य कर्म करता है बिना कर्म फल की अपेक्षा से। अनाश्रित कर्म फलम। देखो कर्मयोग आया कि नहीं यहां पर? कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वो है जो अपने कर्म करता है मगर भगवान की खुशी के लिए करता है, नंबर वन। नंबर टू, भगवान जो फल देंगे हम अनाश्रित कर्म फलम प्रसाद बुद्धि। और कार्यम कर्म करोति है, अपने जो कर्तव्य कर्म जो आदमी करता है। अब प्रश्न उठता है कि कर्तव्य कर्म दो किस्म के हो सकते हैं, एक होगा सकाम और दूसरा होगा। अगर आप अपने कर्तव्य कर्म सकाम करते हो तो वेदांत कहता है कि उसका फल ये है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। अपने कर्तव्य कर्म आप अपने नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना अगर कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। कितने दिन स्वर्ग रहेंगे? छीने पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर वापस आना है, वापस आना है। तो कौन सा कर्म करें हम? तो हमको निष्काम कर्म करना है। निष्काम करने से क्या होगा? कर्म बंधन नहीं होगा। अगर हम ईश्वर की खुशी के लिए अगर हम कर्म करें और उसका कर्म फल अगर प्रसाद के रूप में ले लें, तो ऐसे कर्म वासना नहीं बना सकते। अगर वासना नहीं बनी तो आप बंधन में नहीं पड़ते। इसको हम लोग एक वर्ड में निष्काम कर्म कहते हैं। साकाम कर्म क्या हुआ? साकाम कर्म हुआ जो ईश्वर की खुशी के लिए नहीं है, जो मेरी खुशी के लिए है और जिसमें कर्म फल की अपेक्षा है कि मुझे ये कर्म फल मिले, ऐसे कर्म हमको बांधते हैं। उसमें राग द्वेष आ जाता है जब कर्म फल मिलता है, ये कर्म फल अच्छा है चलो और करेंगे इसको, फिर वह अटैचमेंट बढ़ता जाएगा, राग बढ़ता जाएगा। अगर फल हमारा अच्छा नहीं आया तो उससे द्वेष हो जाता है, तो राग द्वेष बढ़ते जाएंगे और आप बंधन में पड़ते रहोगे। अच्छा, इसके बाद में स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। स स वर्ड जो है ये कर्मयोगी है। देखो यहां पर तीन वर्ड आ रहे हैं, आप जरा बी अटेंटिव। स मीन्स कर्मयोगी। पहली लाइन से आपको भगवान ने इंगित कर दिया अनाश्रित कर्म फल प्रसाद बुद्धि। कार्यम कर्म करोती है, जो अपने कर्तव्य कर्म भगवान की खुशी के लिए कर रहा है, मतलब जो कर्मयोगी है ऐसा व्यक्ति स, ऐसा कर्मयोगी भगवान कहते हैं सन्यासी चाहे योगी चाहे, वो सन्यासी है वो योगी है। अवर्ड सन्यासी का मतलब क्या होता है, योगी का मतलब क्या होता है, और भगवान कैसे कर्मयोगी को इसके साथ इक्वेट करते हैं, इसको आप सीख लीजिए। ये आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। हाँ, कर्मयोगी कैसे योगी है और कैसे सन्यासी हो जाता है, क्यों भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी योगी और सन्यासी है। अच्छा, अब योगी कौन है? योगी जो है पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से योग किसको कहते हैं? परिभाषा बताओ। चित्त वृत्ति निरोधक योग। हाँ, इसको आप लिख कर रखिए। पतंजलि के अंदर योग की डिफिनीशन क्या है? योग उसको कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त मतलब माइंड, वृत्ति मतलब उसके अंदर थॉट्स, निरोध मतलब एकदम बंद कर देना, योग। कई बार हमने आपको बताया है कॉन्शियसनेस प्लस थॉट इज इक्वल टू माइंड, कॉन्शियसनेस प्लस थॉट इज इक्वल टू माइंड, माइंड माइनस थॉट इज इक्वल टू, हो गया ना। अच्छा, चित्त वृत्ति निरोध योग है। देखो पतंजलि को पकड़ के यहां लगाओ अपने फॉर्मूला के अंदर में, चित्त माइंड, वृत्ति थॉट्स, निरोध। अगर वहां से माइंड में से अगर हम थॉट निकाल दिए तो वहां क्या रह गया? अब कौन सा योग हो गया ना। आपको कहां जाना है? आपको चाहिए क्या? कॉन्शियसनेस चाहिए ना। चित्त वृत्ति निरोध योग है। चित्त की वृत्ति को बंद कर दो, देखो योग हो गया, पहुंच गए आप वहां पर। तो जो चित्त वृत्ति निरोध की अभ्यास करता है उसको योगी कहते हैं। योगी कौन है? जो पतंजलि सूत्र के हिसाब से ध्यान में लगा हुआ है उसको हम योगी कहेंगे। यहां वर्ड जो यूज किया ना, ससन्यासी च योगी, ससन्यासी च योगी। स मीन्स वो कर्मयोगी जो पहली लाइन वाला है, वो कर्मयोगी योगी है, वही कर्मयोगी सन्यासी है। तो कर्मयोग तो आपको समझ में आ गया, योगी क्या है आपको अभी बताया हमने। पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से चित्त वृत्ति निरोध ध्यान का जो अभ्यास कर रहा है उसको हम योगी कहेंगे। भगवान कहते हैं ये कर्मयोगी इज इक्वल टू योगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल चलें। वृत्ति देखो दो किस्म की होती है, वृत्ति दो किस्म की है, एक साधारण वृत्ति है, दूसरी विक्षेप वृत्ति है। विक्षेप वृत्ति जो माइंड को एजिटेट करती है उसको विक्षेप कहते हैं, विक्षेप वृत्ति। अरे एक साधारण वृत्तियां चलती रहती है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट है साधारण वृत्ति, मगर कुछ कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जो हमको एजिटेट कर देती हैं, एजिटेट कर देती हैं। तो योगी ने क्या किया, इन दोनों किस्म की वृत्तियों को बंद कर दिया। देखो चित्त वृत्ति निरोध योग, जो इसका अभ्यास करता है उसको हम योगी कहते हैं। वृत्तियां हमने बताई दो किस्म की, एक साधारण वृत्ति, दूसरी विक्षेप वृत्ति। जो ध्यान योग में लगा हुआ है उसको दोनों किस्म की वृत्तियों को बंद करना होगा, ठीक है ना। सिंपल है भाई, गड़बड़ नहीं है कुछ इसमें, दोनों किस्म की वृत्तियों को बंद करना है, ऐसा आदमी योगी है। अच्छा हुआ, इतना तक इसको योगी को यहां रख सकते हैं अभी, उसका फिर प्रूफ करेंगे हम कैसे कर्म योगी योगी बना। सन्यासी कौन है, सन्यासी का मतलब हो गया सर्व कर्म सन्यासी, उसने कर्म का भी त्याग किया और कर्म फल का भी त्याग किया। सन्यासी का मतलब हुआ सर्व कर्म सन्यासी, पांचवें अध्याय में हमने देखा सर्व कर्म सन्यासी का मतलब उसने लौकिक और वैदिक कर्म बंद कर दिए और कर्म फल का भी त्याग कर दिया, मेरे कोई कर्म फल नहीं चाहिए, खत्म, ना हम कर्म करेंगे ना कर्म फल लेंगे, दोनों चीज का ही उसने त्याग कर दिया है। तो कर्म योगी योगी व सन्यासी कैसे बना, भगवान जो कह रहे हैं कि कर्म योगी जो है वो योगी है वो सन्यासी भी है, कैसे हुआ ये, भगवान कैसे उसको बताना चाहते हैं। तो देखो कर्म योगी क्या करता है, कर्मयोगी कर्म करता है मगर कर्म फल का त्याग करता है। देखो कर्मयोगी कर्म करता है और कर्म फल का त्याग करता है। अनाश्रित कर्म फलम पहला वर्ड था, अनाश्रित कर्म फलम, प्रसाद बुद्धि के हिसाब से वो चलता है, हमें ऐसा ही कर्म फल चाहिए ऐसा नहीं वो करता है, हमें परीक्षा के अंदर फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना है ऐसा उसका संकल्प नहीं होता है। कर्मयोगी कर्म करेगा मगर कर्म फल का वो त्याग करता है। अच्छा फल के अंदर उसकी प्रसाद बुद्धि है, इसलिए उसका मन क्या है, उसका मन शांत है, उसका मन शांत है, उसका मन शांत है। मन शांत है मतलब उसके मन के अंदर विक्षेप वृत्ति नहीं है, क्योंकि फल की आकांक्षा नहीं है। योगी का मन कैसा है, योगी में दो वृत्तियां उसने शांत की हैं, एक साधारण वृत्ति दूसरी विक्षेप वृत्ति, उसका भी मन शांत है। कर्मयोगी ने क्या किया है, कर्म योगी ने अपना कर्म वो करता है, मगर कर्म फल की जो वृत्ति है, कर्म फल पाने की जो आकांक्षा की वृत्ति है, जो कि विक्षेप करती है, जो एजिटेट करती है माइंड को, उसको बंद कर दिया, इसलिए कर्म योगी का मन भी शांत है। इसलिए कर्म योगी कर्म योगी योगी हो गया। आपको विच्छेद वृत्ति तक आना होगा। दोनों ने विच्छेद वृत्ति का निगेट कर दिया है, योगी ने भी विच्छेद वृत्ति को निगेट किया है, कर्म योगी ने भी विच्छेद वृत्ति को निगेट कर दिया है। कैसे निगेट किया? मेरे को पर्टिकुलर कर्म फल नहीं चाहिए, इसलिए उसका मन भी शांत है। प्रसाद बुद्धि हमको भगवान जो देंगे हम ले लेंगे, खत्म। इसलिए कर्म योगी इज इक्वल टू योगी। ये योगी कौन सा है? पतंजलि योग सूत्र वाला, ध्यान करने वाला योगी बना। अब सन्यासी कैसे है? कर्म योगी को भगवान ने सन्यासी की दर्जा कैसे दे दिया? अच्छा ठीक है, सन्यासी ने क्या क्या त्याग किया? सन्यासी ने कर्म का त्याग किया और कर्म फल का त्याग किया, दो चीज का त्याग किया। कर्मयोगी ने क्या क्या त्याग किया? कर्म फल का त्याग किया। तो दोनों में जो है त्याग फैक्टर है, त्याग फैक्टर दोनों में कॉमन है। और सन्यास के अंदर त्याग जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बहुत महिमा है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वम मानसु, याद है? पढ़ा था कब, कहां से आई है? वैदिक आरती। अच्छा, और कभी पढ़ा है ये श्लोक? कहां से आया है? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानुषु परेण नाकं निहितं गुहायां। कब हुआ था भैया? अभी 6 महीने नहीं हुए और इतनी डिटेल के अंदर आपको ये बताया गया था कि वो आत्मतत्व न कर्मणा, कर्म से नहीं होगा, प्रजया अपनी प्रजा से भी नहीं होगा, धन से उससे भी नहीं होगा, आपको त्याग करना है कर्म प्रजा धन का त्याग करने से, तब उसके बाद में वो मिलेगा। तो त्याग की जो है महिमा सन्यास के अंदर बहुत है। तो सन्यासी भी त्याग करता है, कर्मयोगी भी त्याग करता है। सन्यासी कर्म फल का त्याग करता है, कर्मयोगी भी कर्म फल का त्याग करता है, इसलिए कर्मयोगी सन्यासी है। तो कर्मयोगी योगी है, कर्मयोगी। देखो किताब में तो सीधा बस इतना ही लिखा रहेगा कि वो कर्मयोगी इज इक्वल टू योगी या वो कर्मयोगी इज इक्वल टू सन्यासी, बस हो गया, ठीक है आगे बढ़ो आप। मगर कैसे हुआ वो, इतना डिटेल जानने से तब आपको पता लगेगा कि कैसे वो सन्यासी हुआ। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं न निरग्नि चन क्रिय, न निरग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि साधन है, अग्नि जो है वो साधन है। जब कर्मकांड करते हैं तो अग्नि एक साधन है, अग्नि के थ्रू जो है हम अपनी सब ऑब्लेशंस हविष को भेजते हैं भगवान के पास में। जो अग्नि से संयुक्त नहीं है वो क्या है? उसको निरग्नि कहते हैं। जिसने विविदिशा सन्यास लिया, सर्वकर्म सन्यास, उसने लौकिक कर्म और वैदिक कर्म छोड़ दिए, कर्मकांड छोड़ दिया, कर्मकांड छोड़ दिया उसने। अच्छा, इसलिए उसको हम निरग्नि कहते हैं, सन्यासी को कहते हैं निरग्नि। निरग्नि का मतलब क्या हुआ कि इष्ट कर्म नहीं है। हम क्यों हवन वगैरह करते हैं, क्यों कर्मकांड करते हैं वेद के अनुसार, कि हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा है, इसलिए उसके लिए, उस पाने के लिए ये उन्होंने कहा कि ऐसा कर्मकांड करो तो आपको ये फल मिल जाएगा। तो सन्यासी के अंदर जो है वो नहीं है, वो उसको नहीं कुछ चाहिए, वो तो सारा सब सन्यास लौकिक और वैदिक कर्म बंद कर दिया उसने। तो उसके पास में जो है निरग्नि होने से सन्यासी नहीं बन जा, अच्छा या उसके बाद में वो उसको इष्ट कर्म नहीं चाहिए, कोई उसकी इच्छा नहीं है ना इष्ट कर्म को, ये फल चाहिए ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये कहते हैं ना, निरग्नि का मतलब जो है केवल अग्नि छोड़ देने से वो सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी कब बनता है, जब वो कर्म का भी त्याग करेगा और कर्म फल का भी त्याग करेगा। केवल अग्नि के त्याग करने से ही क्या हम उसको सन्यासी कह देंगे? अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहन के आ जाए, सन्यास उन्यास नहीं लिया, बोला नहीं हम तो खाना नहीं बनाएंगे, हम तो निरग्नि हैं, तो खाली निरग्नि होने से सन्यासी नहीं हो जाता। नच अक्रिय, तो निरग्नि वर्ड जो है सन्यासी को इंगित करता है और अक्रिय योगी को करता है। कैसे आप कहते हैं योगी को अक्रिय करता है, अक्रिय वर्ड योगी के लिए है? योगी कौन है? जो ध्यान योग में लगा हुआ है। उसने क्या किया है, जब ध्यान में बैठता है तो क्या करता है? शारीरिक कर्म बंद हो गए ना, मानसिक कर्म है, साधारण वृत्ति विच्छेद वृत्ति दोनों ही नहीं है, तो वो तो ना शारीरिक कर्म कर रहा है ना मानसिक कर्म कर रहा है, इसलिए वो अक्रिय है, क्रियावान नहीं है, अक्रिय है। अच्छा, तो योगी अक्रिय है, तो ये अक्रिय वर्ड जो है पूर्त कर्म के हिसाब से पकड़ा जाता है। तो पहला वाला निरग्नि इष्ट कर्म और दूसरा वाला अक्रिय जो है पूर्त कर्म को इंगित करता है। तो कर्म योगी जो है वो पूर्त कर्म करता है, सोसाइटी की भलाई के लिए। अब कोई यहां एक कुआं खोद दे, कोई अस्पताल बना दे, कोई स्कूल बना दे, उसको क्या कर्म कहते हैं? पूर्त कर्म। उसको पूर्त कर्म कहते हैं। कर्मयोगी पूर्त कर्म करता है, मगर योगी, योगी कुछ नहीं कर रहा है, उसको शारीरिक कर्म भी नहीं है, मानसिक कर्म भी नहीं कर रहा है, वो तो योग ध्यान में बैठा हुआ है। फिर भी भगवान जो है कर्म योगी को योगी से इक्वेट करते हैं और सन्यासी से इक्वेट करते हैं। तो आपको समझ में आया? ये घर जाके फिर से रिकॉर्डिंग सुनिएगा और मनन कीजिएगा इसके ऊपर में, तब बैठेगा। कैसे कर्मयोगी योगी के समान है, कैसे कर्मयोगी सन्यासी के समान है, इसके ऊपर ध्यान कीजिएगा। अच्छा, दूसरा श्लोक।
यम सन्यासम इति प्राहुः,
यम सन्यासम इति प्राहुः,
योगं तं विद्धि पांडव,
योगं तं विद्धि पांडव,
नायसन्यस्य नायसन सन्यस्त संकल्पः,
नायसन्यस्त संकल्पः,
योगी भवति कश्चन,
योगी भवति कश्चन,
यम सन्यासं इति प्राहुः, योगं तं विद्धि पांडव, नैयसंन्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन।
यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। यम संन्यास इति प्राहु, तो शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति स्मृति विद, जो श्रुति और स्मृति को जानने वाले हैं वो लोग क्यों क्या कहते हैं कि जिसने सर्व कर्म और कर्म फल का त्याग कर दिया है, इस भाव को वास्तविक संन्यास कहते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं जिसने कर्म और कर्मफल दोनों को हो त्याग कर दिया है, इसका भाव जिसके पास में है उसको संन्यास कहते हैं। अच्छा, योगम तम विद्धि पांडव, भगवान कहते हैं कि जो संन्यास है वही योग है। कैसे? कर्मानुष्ठान रूपी कर्मयोग, कर्मयोग मतलब निष्काम, भी तो वही वास्तविक संन्यास जान, उसने भी तो कुछ त्याग किया, योगी ने भी कुछ त्याग किया। क्या त्याग किया योगी ने, कर्मयोगी ने? कर्म फल का त्याग किया। सन्यासी ने क्या त्याग किया? कर्म का त्याग किया, कर्म फल का भी त्याग किया। कर्मयोगी क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है मगर कर्म फल का त्याग किया है। इसलिए भगवान कहते हैं यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। ओ अर्जुन, जिसको वेद और स्मृति के जानने वाले, जिसको संन्यास कहते हैं। संन्यास किसको कहते हैं? जिसने कर्म और कर्मफल दोनों का त्याग किया है, उसी को तुम योग भी जानो। यहां पर योग मतलब निष्काम कर्म करने वाला, कर्म योग, उसको जानो। नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। जिसने फल विषयक संकल्प इच्छा का त्याग नहीं किया। नहीं असन्यस्त संकल्प, असन्यस्त, असन्यस्त में संन्यास मतलब त्याग, असन्यस्त में जिसने त्याग नहीं किया। किस चीज का त्याग नहीं किया? संकल्प का त्याग नहीं किया। किस संकल्प का त्याग नहीं किया? कि हमको ऐसा फल चाहिए। इच्छा का त्याग नहीं किया ऐसा कर्मी योगी नहीं हो सकता। योगी नहीं हो सकता मतलब, अगर आपके मन के अंदर संकल्प चलते रहें, वृत्तियां चलती रहें, तो आप क्या योगी कहला सकते हो? योगी कौन है? जिसकी साधारण वृत्तियां खत्म हो चुकी हैं, जिसकी विच्छेद वृत्ति खत्म हो चुकी है, वो है योगी। अगर आपके मन में संकल्प चल रहा है तो आप अपने को योगी कहोगे क्या? नहीं कह सकते अपने को योगी। क्योंकि वो संकल्प जो है चित्त के अंदर विक्षेप करेगा। तो शास्त्र ने संन्यास को भी ग्लोरीफाई किया है, त्याग की प्रधानता है, और इसी तरह से कर्मयोगी भी जो है वो त्याग कर रहा है, कर्मफल का त्याग कर रहा है, इसलिए कर्मयोगी जो है सन्यासी के बराबर है। अच्छा, तो कर्मयोग के अंदर योग और सन्यास के अंदर इसेंस जो है वो मिलते हैं। पहले श्लोक के अंदर आपको हमने बताया ना, कर्मयोग ने कर्मफल का त्याग किया, सन्यासी ने कर्मफल का त्याग किया। कर्मयोगी ने ज्यों की कर्मफल का त्याग किया इसलिए विच्छेद वृत्ति नहीं है, योगी ने भी विच्छेद वृत्ति का त्याग किया इसलिए कर्मयोगी इज इक्वल टू योगी। कौन सा योगी? पतंजलि योग सूत्र वाला योगी इज इक्वल टू सन्यासी। सन्यासी जिसने कर्म का भी त्याग किया, कर्मफल का भी त्याग किया। वाह, कर्मयोग की महिमा आपको मिल गई। कर्मयोग कितना महान है। इज इक्वल टू कर्मयोग इज इक्वल टू योग इज इक्वल टू सन्यास। अब प्रश्न आता है कितने दिन तक कर्मयोग करें? कितने दिन तक करें? लोग सारा जीवन बोलते हैं रुद्रम कर रहे हैं, रोज सवेरे उठ के एक बार करते हैं, कोई विष्णु सहस्रनाम कर रहा है, 11 बार कर रहा है, कितनी बार, कब सारा जीवन कर रहा है कर्मयोग सेवा करते जा रहे हैं, उसके आगे का स्टेप नहीं मालूम है क्या करना है, कितने दिन तक कर्मयोग करें, सारा जीवन करना है क्या? कर्म योग का पर्पज क्या है? आप जब जो अपने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हो, जब वो शुद्ध हो जाता है, मैल निकल जाती है, फिर डालते हो क्या बार? बंद करते हो ना मशीन को, शुद्ध हो गया, हटाओ बंद करो मशीन को। तो हमने तो बंद नहीं किया सर। अब बंद की बात कर दो, शुरू ही नहीं किया कर्म योग। बंद तो दूर की बात है, आज शुरू नहीं हुआ हमारा तो। तो भगवान ये कहना चाहते हैं यहां पर कि ये प्रत्येक चीज जब अपना फल दे जाए, वो बंद हो गई, उसके बाद आगे बढ़ो। कई जगह लोग जाते हैं मंत्र दीक्षा लेके चले आते हैं, अरे उसके बाद फिर पूछो भाई और आगे क्या करना है? कितने दिन तक मंत्र दीक्षा लेके हम मंत्र पढ़ते रहेंगे? रोज सवेरे उठकर दस माला कर रहे हैं हम, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ? हाँ, तो वो तो जिससे जिसने दीक्षा दी उसको बताना होगा ना। अब यहां पर तीसरे श्लोक के अंदर भगवान बताने जा रहे हैं कि कितने दिन तक हमको कर्मयोग करना है। अगर आपको जानना हो तो आप नेक्स्ट क्लास में आ जाना, आज नहीं बताएंगे। ओ
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।